الحمد
لله
الحمد
لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محفل گیارہویں شریف کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے, اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ پتہ یہ چلا کہ کچھ جھوٹے بھی موجود ہیں, اس لیے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا. اگر سارے ہی سچے ہوتے تو پھر تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جھوٹے بھی موجود ہیں, اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ جھوٹے تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں یہ جھوٹے تمہیں راہ سے بے راہ نہ کر دیں. اگر تم ہدایت چاہتے ہو, اگر تم رہنمائی چاہتے ہو, اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ سچے کون ہیں؟ قرآن نے تو ہمیں بتا دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, وہ سچے کون ہیں اور ان سچوں کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سچا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے. اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں ہر کوئی لبادہ اوڑ کر آ جاتا ہے, ہر کوئی پگڑی باندھ کر آ جائے تو آپ کیا سمجھ لیں کہ یہ کون ہے, رہزن ہے یا رہبر ہے؟ جب تک رہزن اور رہبر کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی. آپ دیکھتے ہیں نا, جب تک اصلی گھی موجود تھا بلا دھڑک جا کے لے لیا کرتے تھے, گھی چاہیے لے لیا, اور جب سے ڈانڈا آ گیا, بناسپتی آ گیا, نقل آ گئی, اب پہچاننے میں مشکل ہے نا. اب اصل اور نقل کو کیسے پہچانو, اصل اور نقل کو کیسے پہچان؟ ہر شعبے میں یہی مسئلہ ہے, راہ طریقت میں بھی, जब इंसान कदम रखना चाहे तो उसे चाहिए कि ये देख ले कि किसके पीछे जा रहा, किसके पीछे जा रहा। जब तक ये तायुन नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो सही है, वाकई रहबर है, उस वक्त तक मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आप किसी के पीछे चल पड़े और पता चला कि उसे खुद मंजिल का पता नहीं है, तो जो खुद नहीं जाने दूसरे को कैसे पहुंचाए, जो खुद नहीं जानता दूसरे को कैसे पहुंचाए। अब मैं एक मिसाल दे दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। एक आदमी एक रास्ते से गुजर चुका है, उसको पता है कि कहां नशेब है, कहां फराज है, कहां गड़ा है, कहां बिल्कुल प्लेन जमीन है, साफ है, उसको पता है, वो गुजर चुका। अब आपको भी उसी रास्ते से गुजरना है, तो आप क्या कहेंगे, उससे पूछेंगे कि मुझे बताओ मैं किस तरफ से जाऊं। जब आपने उससे पूछा, उसने कहा देखो तुम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो गहरा गड़ा है, बहुत गहरा है, संभाल के कदम रखना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उसी में गिर जाओ। और अगर बेध्यानी में तुमने कदम बढ़ा दिया, उसमें गिर गई, टांग वांग टूट गई, मसला हो जाए, उसके बाद जब तुम और आगे चलो तो बिल्कुल साफ सड़क है, आंख बंद करके चले जाओ, कुछ नहीं हो। लेकिन बिल्कुल एंड पर जाओगे, वहां पर एक मेन होल है, उसका ढकना ही नहीं है। ऐसा भी होता है, ढकना ही उठा के ले जाओ, चोरों का अल्लाह भला करे वो भी नहीं छोड़ते। आपको अंधेरे में जा रहा है तो पता क्या चले कहां गए, कहीं बिल्कुल आखिर में एक मेन होल है जिसका ढकना ही नहीं है, बहुत संभाल के जाना, अगर उसमें गए तो फिर तो गए सीधे, यहां तो नीचे गए उधर ऊपर चले गए, मौत वाकई हो जाएगी ना। एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह जब तुम राह तरीकत में कदम रखो, जिसके हाथ पर बैत करना चाहो, जिसके पीछे चलना चाहो, जिसको रहनुमा बनाना चाहो, जिसे रहबर बनाना चाहो, देख लो कि ये कौन है, रहबर है या रहजन, रहबर है या रहजन। ऐसा नहीं कि रहबर के रूप में रहजन हो, रहजन जानते हो ना, डाकू, रहजन कहीं तुम्हारे ईमान का ही सफाया ना कर दे। पता चला कि गए थे वली बनने के लिए, यहां तो मुसलमान ही नहीं रहे, ईमान ही गया है ना। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ होगे, जो खुद गुजर चुका है तुम्हें भी गुजार देगा, जो खुद गुजर चुका है गुजार देगा, और जो खुद नहीं गुजरा उसे क्या पता कहां नशेब है कहां फराज, वो कैसे तुम्हें गुजारेगा। तो जो गुजर चुके हैं वो कौन है, सच बोलने वाले सिद्दीक अकबर हैं, सच बोलने वाले फारूक आजम हैं, सच बोलने वाले उस्मान गनी हैं, सच बोलने वाले अली मुर्तजा हैं, सच बोलने वाले इमाम हसन अस्करी हैं, सच बोलने वाले इमाम बाकर इमाम जाफर हैं, सच बोलने वाले गौसे आजम हैं, सच बोलने वाले इमाम आजम हैं, सच बोलने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, बाबा फरीद हैं, दाता गणपत हैं, मखदूम समनानी हैं, मुजद्दिद अल-फैसली, ये सब सच बोलने वाले हैं, सच हैं, और एक सच्चा दूसरे सच्चे के साथ मिला हुआ, एक सच्चा दूसरे सच्चे के दामन से वाबस्ता है, चले जा रहे हैं, जो दामन से वाबस्ता है ना चले जा रहे हैं। अब देखिए एक मिसाल मैं दे दूं, हमें कहीं जाना है, पहली बात तो ये कि हम सबको यहां से कहां जाना है, इस दुनिया से हम सबको कहां जाना है, कहां जाना, आखिरत में जाना भी है या नहीं, सबको नहीं जाना, शायद चंद लोगों को जाना है, सबको जाना है तो बोलो, जो नहीं चाहेगा वो भी जाएगा, कोई मना करके देखे, जब आ जाएंगे ना हजरत इज़राइल तो जाना पड़ेगा, फिर रुकना नहीं है, सबको जाना है ना आखिरत में, और वहीं के लिए तैयारी करनी, यहां के लिए क्या तैयारी, वहीं के लिए तैयारी करनी है, वही इम्तिहान है, वही सब कुछ है, तो उसके लिए तैयारी यहां करनी, वहां के इम्तिहान के लिए तैयारी यहां करनी, और उसी के लिए रहबर चाहिए, रहनुमा चाहिए, पीर मुर्शिद चाहिए। तो अब एक दुनियावी मिसाल दे दूं कि इस इलाके से हमें जाना है दरगाह आलिया अशरफिया फिरदौस का, ठीक है ना। अब आपको रास्ता नहीं पता, आपने कहा मैं जाना चाहता हूं, कैसे जाऊं? आप आए शकील अशरफी साहब के पास, मुझे जाना है। उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ, एक साथ जा रहे हैं उनके साथ भेजो, आप बैठ गए। जमील साहब आ गए, वो जानते थे रास्ता। मिसाल और से सुनिएगा, फिर अगली बात आपके समझ में आ जाएगी। कहा कि जा रहे हैं इनके पीछे जाओ, वो चले गए। फिर एक और साहब, उन्होंने कहा मुझे भी जाना है, कहा तुम इसके पीछे जाओ। पहले कौन है? जमील साहब सबसे आगे, उनके पीछे दूसरा, तुम इसके पीछे, तीसरा वो दूसरे के पीछे, चौथा वो तीसरे के पीछे, पांचवा चौथे के पीछे। अब किसी ने पूछा कि मेरे आगे वाला जो है ये तो जानता नहीं, आपने कह दिया इसके पीछे चले जाओ, तो ये कहेंगे जानता नहीं है, लेकिन एक जानने वाले के पीछे जा रहा, जानता तो नहीं है। अब जानता कौन है? जो सबसे पहला है वही जानता है ना। मिसाल के तौर पे जमील साहब जो वो जानते हैं ना दरगाह शरीफ का पता, वो जा चुके हैं। अब उनके पीछे वाला तो नहीं जानता ना, वो उनको देख रहा। और उसके पीछे जो तीसरा है वो दूसरे को देख रहा, और चौथा तीसरे को देख रहा है, पांचवा चौथे को देख रहा है, छठा पांचवें को देख रहा है। अब अगर कोई सवाल कर ले कि ये मेरे आगे वाला ये तो जानता नहीं, तो हम कहेंगे जानता नहीं है, लेकिन जानने वाले के पीछे जा रहा, जानने वाले के पीछे जा रहा है, इसलिए पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्या हुआ? एक नसीहत उनको की, जिनको भी भेजा ना कि तुम इसके पीछे जाओ, उससे कहा उसके पीछे, उसके पीछे, एक नसीहत की, देखो कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए, कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए। क्या मतलब? अगर कदम रोक दिए तो नहीं पहुंचोगे, नजर रखी यानी जिसके पीछे जा रहे हो नजर रखी, लेकिन कदम रोक दिए खड़े रहे तो क्या पहुंचोगे? वो तो आगे निकल जाए। और अगर कदम चलते रहे नजर हटाने तक, वो दाएं मुड़ गए आप बाएं मुड़ गए, तब भी नहीं पहुंचोगे। तो सबको एक नसीहत की, जो एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं उनको नसीहत की, अपने आगे वाले पर नजर रखो, कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए, मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर नजर रखी कदम रोक दिया नहीं पहुंच सकते, और कदम चलते रहे नजर हटानी तब भी नहीं पहुंचोगे। बात समझ गए? तब भी नहीं पहुंचोगे, इसलिए नजर भी रखो और कदम भी चलते रहे। दूसरी बात, जिसके पीछे चलो ये देख लो कि उसकी नजर आगे वाले पर है या नहीं। नहीं समझे बात? जिसके पीछे चलो ये देख लो कि उसकी नजर अपने आगे वाले पर है या नहीं। अब मैं खुलकर ये कह दूं, जिसके हाथ में बैठ करो देख लो कि उसकी नजर गौसे आजम पर है या नहीं, गरीब नवाज पर है या नहीं, मुजद्दिद अल्फिसानी पर है या नहीं। अगर नहीं है खुद भी गुमराह होगा, तुम्हें भी गुमराह कर। इसलिए जिसके पीछे चलो देख लो उसकी नजर अपने अगले वाले पर है या नहीं। ये सब एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं, ये सारे शजरे जो हैं क्या हैं? शजरे तरीकत यही है, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम कैसे जा रहे हो, हम कहते हैं हमने रास्ता नहीं देखा, लेकिन जानने वाले के पीछे जा रहे हैं। अशरफुल मशाइख के पीछे चले जा रहे हैं, वो कुतुब रब्बानी के पीछे जा रहे हैं, वो अशरफी मियां के पीछे जा रहे हैं, ये चैन चल रही है, एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंच जाए, पहुंचेंगे या नहीं? ये सब सच्चे हैं, सच बोलते रहे, सच के खातिर जिंदा रहे, सच के खातिर अपनी जान भी दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ रहोगे, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहोगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अब आप कहेंगे सच्चे की निशानी क्या है? जिससे पूछो वो कहेगा मैं सच्चा हूं, ये है ना। कोई आदमी अपने आप को झूठा कहते ही नहीं, चाहे कितना ही झूठ बोलता, कोई कहता है झूठ बोलने में मशहूर हो, लेकिन उससे पूछ लो नहीं मैं सबसे सच्चा हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अपने आप को कोई झूठा नहीं कहता। दूसरे कहेंगे ये झूठा है, ये झूठा है, फला झूठा है, मैं तो सच्चा हूं, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। हालांकि यही सबसे बड़ा झूठ है, जो कह रहा है कि मैं सच्चा हूं, यही सबसे बड़ा झूठ। तो अब हम पहचाने कैसे कि सच्चा है कौन? कौन सच्चा है, उसके पीछे कैसे चले, उसकी कोई ना कोई निशानी तो होनी चाहिए ना, ताकि निशानी हो, हमें पता चल जाए कि हाँ ये सच्चा है, ये हमें ले चलेगा, ये सच बोलने वाला है। उससे पूछने की जरूरत नहीं, सच्चे का चेहरा बता देगा कि ये सच्चा है, सच्चे का चेहरा बता देगा ये सच्चा है। अबू जहल एक आदमी को ले आया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास और दूर से बुलाकर कहता है देखो वो आदमी जो बैठा है बताओ वो कैसा है। ये अपने आप को नबी कहता है, ये कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पर ईमान लाओ। वो आदमी जो था वो कयाफा शनास था, जो चेहरा देखकर बता दे कि चेहरा कैसा है, ये आदमी कैसा है। उसने दूर से देखा और ये देखकर इसलिए आया था ताकि मजाक उड़ाए नबी पाक अलैहिस्सलाम, मजाक उड़ाते हुए तमस्कुर करते हुए कहा वो जो आदमी बैठा है वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, देखो कैसी बात है, अब तुम इसका चेहरा देखकर बताओ ये कैसा है। उसने गौर से देखा, उसने कहा कौन सा आदमी, कहा वो जो दो के बीच में बैठा है। उसने दूर से देखा, उसने कहा ये क्या कहता है, कहा ये कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने कहा अगर ये कहता है तो वाकई सच कहता। उसने कहा अरे ये क्या बात हुई, वाकई इसलिए ये चेहरा बता रहा है कि झूठे का नहीं है ये सच्चे का चेहरा। ये सच्चे का चेहरा है, ये झूठे का नहीं है, पता ये चला कि सच्चे का चेहरा ही बता देता है ये सच्चा, उसको कहने की जरूरत नहीं, सूरज को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं सूरज हूं, आफ्ताब को कहने की जरूरत नहीं कि मैं आफ्ताब हूं, जब वो निकलता है वो उसका निकलना ही उसके वजूद की दलील है। जब आफ्ताब निकलता है रोशनी हो जाती, रोशनी होती है ना, रोशनी हो जाती, फिर कहने की जरूरत नहीं सूरज निकल आया, या सूरज को कहने की जरूरत नहीं कि मैं निकल आया, कायनात ने देख लिया पूरी दुनिया रोशन हो गई, कहा सूरज निकल आया। इसीलिए जहां अल्लाह का कोई वली होता है, जहां उसका मरकज होता है, जहां उसका रोजा होता है, या वो जिंदगी में वहां होता है, उसको कहने की जरूरत नहीं कि मैं हूं, उसकी खुशबू बता देती है कि यहां पर वली, उसका चेहरा बता देता है कि ये सच्चा है, उसका अमल बता देता है कि ये सच्चा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब एक निशानी तो यह हो गई कि चेहरे ने बता दिया, दूसरी निशानी उसका अमल बता देता है कि वो सच्चा। इसलिए देखें एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक, सादिक के माना सच्चा और सिद्दीक के माना भी सच्चा, लेकिन सादिक वो है जो अपने कौल में सच्चा हो और सिद्दीक वो है जो कौल और फेल दोनों में सच्चा, काल और फेल दोनों में सच्चा। तो कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ, ये अपने काल में भी सच्चे हैं, अपने फेल में भी सच्चे हैं, अपने इल्म में भी सच्चे हैं, अपने अमल में भी सच्चे हैं। इनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, इनका अमल देखो तो तुम खुद भी सच की राह पर गामजन हो जाओ। सच और झूठ, हक और बातिल, इसकी लड़ाई अजल से हो रही है और अबद तक होती रहेगी। हमने सच को आदम के रूप में और झूठ को शैतान के रूप में पहचाना, सच को इब्राहिम खलीलुल्लाह के रूप में और झूठ को नमरूद के रूप में पहचाना, सच को मूसा कलीमुल्लाह के रूप में और झूठ को फिरौन के रूप में पहचाना, सच को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में और झूठ को अबू जहल अबू लहाब उतबा शैबा मुशरिकीन मुनाफिकीन के रूप में पहचाना, सच को हुसैन बिन अली के रूप में और झूठ को यजीद के रूप में पहचाना। ये लड़ाई चल रही है लेकिन फतह हमेशा सच की हुई, इसलिए कि सच हर दौर में सच है और झूठ हर दौर में झूठ। झूठ पर कितनी इमारत तामीर कर लो जरा सी देर में वो मुनहदिम हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन सच हर दौर में सच है। और इसकी मिसाल आप ये समझे, एक सच आप बोले उसमें इत्मीनान है, सुकून है, और एक झूठ बोले उस झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे, अब तजर्बा करके देख, कोई झूठ बोला उसको निभाने के लिए एक और झूठ बोला, फिर उसको निभाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, झूठ की लाइन चल पड़ी और एक सच बोल दिया, उसी में इत्मीनान है, उसी में सुकून है, उसी में आफियत, उसी में आफियत। अब हमारी कैफियत क्या है? हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? दोनों ही खैर, अब मैं सबके बीच में क्या कहूं, खैर बाहर, यहां तो खाली सारे सच्चे ही बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। सच बोलना चाहिए, हम खुद झूठ बोलते हैं और बच्चों से कहते झूठ ना बोलो, असर होगा, खुद अमल नहीं तो दूसरे पे कैसे असर। कोई घर में आया, आप मिलना नहीं चाहते, फरा साहब आए हैं, ओहो ये क्यों आ गए यार, इससे तो मिलना ही नहीं, बच्चे से जाओ कहना घर पे नहीं है, घर पे है या नहीं, होते ना घर पे, अब फिर कहते नहीं है तो सच हुआ या झूठ? झूठ हुआ ना। अब बच्चे ने जाके कहा अब्बा कह रहे मैं घर पे नहीं हूं, अब बच्चा यही तरबियत देगा तो क्या होगा? सच हर दौर में सच है, झूठ हर दौर में झूठ। तरबियत का असर, गौसे आजम की तरबियत ही सच पर हुई, मां ने कहा बेटा झूठ ना बोलना, गौस ने बचपन ही में एक सच से 60 डाकुओं को टाइप करवा दिया। इब्तिदा ही सच से हो रही, जिसकी इब्तिदा सच्चाई पर हो तो फिर उसकी इंतहा कहां हो, फिर वो गौसे आजम ना बने तो कौन बनेगा? पता चला ये बुजुर्गान दीन और ये कामलीन हमें सच बोलने की तलकीन कर रहे हैं, सच बोलने की तलकीन कर। इसीलिए कुरान ने कहा इनके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ, कूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब हम सच्चों के साथ होंगे तो नतीजा क्या होगा, फायदा क्या होगा? आप कहेंगे चलो हमने इनके हाथ पे बैत कर ली, हम इनके पीछे चल रहे हैं, गौसे आजम का दामन हमारे हाथ में, इससे फायदा क्या है? सुनो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक बाजार है, उसमें एक बच्चा घूम रहा, उसकी जेब में 100-100 के नोट हैं, और उसी बाजार में एक चोर भी घूम रहा। चोर ने बच्चे को देखा कि ये तो नादान है, ये नासमझ है, कमसिन है, मैं इसको बैला फुसला के वो नोट चोरी कर लूं तो कर सकता है या नहीं? कर सकता है ना, बच्चे को टॉफियां दिलवा दी, पैसे निकाल लिए खामोश। आजकल तो बड़ों बड़ों की जेब में से निकालने से पता नहीं चलता, तो वो तो बच्चा है बेचारा, ठीक है, अब वो चोरी कर लेता। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं उसी बाजार में एक और बच्चा है जिसकी जेब में 1000-1000 के नोट। अब वो चोर देख रहा है कि ये नादान है, ये कमसिन है, ये नासमझ है, मैं ये नोट चोरी कर सकता हूं। लेकिन वो बच्चा किसी की उंगली पकड़े हुए जा रहा, बात समझ रहे? जो पहला बच्चा था ना वो किसी की उंगली नहीं पकड़ा था, ऐसे ही बाजार में घूम रहा था। चोर ने क्या किया, टॉफियां दिलाई, पैसे दिए, भाग। और जिसकी जेब में 1000 के नोट थे वो अकेला नहीं है, अपने बाप की, चाचा की, मामू की, किसी की उंगली पकड़े हुए जा रहा। अब चोर की निगाह पड़ती है कि ये नादान है, ये नासमझ है, ये कमसिन है, मैं बैला फुसला के मैं चोरी कर लू, ये खुद तो नादान है लेकिन जिसकी उंगली पकड़े हुए है वो बड़ा दाना, जिसकी उंगली पकड़े हुए हैं वो बड़ा समझदार है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि फिर वो चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो एक समझदार की उंगली पकड़े हुए जा रहा, एक समझदार की उंगली पकड़े हुए जा रहा। चोर देखता है लेकिन ऐसे ले जाता। फरमाते हैं यही मिसाल है कि दुनिया एक बाजार है और तुम एक बच्चे की मानिंद हो, दौलत ईमान है जो तुम्हारे दिल में है और चोर शैतान है। शैतान तुम्हें देखता है कि अरे ये भोला वाला मुसलमान, ये भोला वाला सुन्नी मुसलमान की फिर रहा है, इसके पास ईमान और अकीदे की दौलत है, मैं इसको बैला फुसला कर चोरी कर लू, मैं चोरी कर लू, और वो कर भी लेता है, धोखा देकर बहला कर फुसला कर दुनिया भी उसमें लगाकर ईमान और अकाइद को चोरी कर देगा, बेईमान बना देगा। लेकिन एक वो भी है जिसके पास ईमान की दौलत है, अकीदा सही है, सब कुछ है, शैतान देखता है कि ये नादान है लेकिन इसके हाथ में गौसे आजम का दम है। غریب نواز کا دامن، مجدد الفسانی کے دامن، مخدوم سمنانی کا دامن، بابا فرید، محبوب الہی، ان سب کا دامن ہے۔ وہ کہتا ہے خود نادان ہے، لیکن جس کا دامن پکڑے ہوئے وہ بڑا دانا ہے، وہ یہ چوری نہیں کرنے دے، اس لیے اس پر داؤ نہیں چلے گا۔ یہ ہے سچوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا نتیجہ اور فائدہ، کہ جب ہم کسی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، ہم اس کی نگرانی میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے عقائد کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہماری جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وَقُورُ مَا صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا نا، کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جب وہ تمہارا نگران ہوگا تو نہ صرف تمہاری جان کی نگرانی کرے گا، تمہارے ایمان کی بھی نگرانی کرے گا، اس لیے کہ اس کی نظر ایسی ہوگی کہ نہ صرف تمہارے جسم پر، تمہارے دل پر بھی ہوگی، جان کی بھی حفاظت ہوگی، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایسی نظر ہوگی، اور ایسی نظر غوث اعظم کے پاس، ایسی نظر مخدوم سمنانی کے پاس، ایسی نظر بزرگان دین اولیاء کاملین کے پاس۔ اسی لیے غوث نے فرما دیا تھا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ایک رائی کا دانہ۔ تم رائی کے دانے کو ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھو، تم اس کو دیکھو گے، میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، پوری کائنات۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی ایک جگہ بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اتنی نظر تو ہماری نہیں، اب وہ کیسے دیکھے گا؟ اس طرح دیکھے گا کہ ایک ہے ظاہری نظر اور ایک ہے باطنی نظر۔ ظاہری نظر ہے نا، جس سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظاہری نظر۔ ایک ہے باطنی نظر، جو دل کی آنکھ جسے کہا جاتا ہے، ظاہری آنکھیں بند ہو پھر بھی دل کی آنکھوں سے انسان دیکھ رہا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ارے دیدار کے لیے آنکھیں کھولو گے یا بند کرو؟ کھول کے دیکھا جائے گا نا، ہم کھول کے دیکھتے ہیں آنکھیں، اللہ والے آنکھیں بند کر کے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ ظاہری آنکھیں بند بھی ہو جائیں، قلب کی آنکھوں سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں تاثیر ہے، جس پر ایک نگاہ ڈال دیں ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی نگاہوں میں تاثیر ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نگاہ ڈالی سب کچھ قلب کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، کیسے ہو سکتا؟ اب دیکھو، ایک نظر ہوتی ہے نظر بد، نظر بد ہے نا، اور نظر بد کا لگنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بچہ رونے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ امام کے پاس لے کے دم کر دو نظر اتر جائے، پیر صاحب کے پاس جاؤ دم کرا دو نظر اتر جائے، یہی ہے نا۔ نظر لگتی ہے یا نہیں؟ لگتی ہے نا، تو وہ کون سی نظر ہے؟ کیا اچھی نظر ہے؟ وہ جس نظر سے بچہ رونے لگے اچھی نظر ہے، بری ہے نا، جبھی تو رو رہا ہے، ورنہ ہنسے گا نہیں۔ اور نظر کا لگنا ثابت ہے، بڑوں کو بھی ہوتی، چھوٹوں کو بھی ہوتی، اور اس کا توڑ کلام پاک، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے نظر اتر جائے۔ اسی طرح چیز، اب یہ بتاؤ کہ نظر بد میں تاثیر ہے یا نہیں؟ نظر بد میں تاثیر ہے نا، جب ہی تو بچہ رونے لگا۔ اگر تاثیر نہ ہوتی تو کیوں روتا؟ نظر بد میں تاثیر ہے، تو نظر بد کی تاثیر تو مانتے ہیں اور نظر نیک کی تاثیر نہیں مانتے، حیرت کی بات ہے نا۔ نظر بد جب لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مانتے، کہتے ہیں ہاں صحیح حدیث سے ثابت ہے، نظر بد کا لگنا ثابت ہے، بچہ رونے لگتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کو نظر لگ گئی۔ غور کرو، जब नजरे बद बीमार कर सकती है तो नजरे नेक सेहतियाब भी कर सकती है। जब नजरे बद में ये तासीर है तो नजरे नेक में क्या तासीर होगी, है ना? ये हो सकता है कि बद में तासीर हो और नेक में तासीर ना हो। नेक नजर गौसे आजम की है, नेक नजर बाबा फरीद की है, नेक नजर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की है, नेक नजर मखदूम समनानी की। लेकिन फर्क है, जाहिरी और बातनी निगाह में फर्क है। कैसे? अब आपकी निगाह कमजोर हो जाए तो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। लगाते हैं ना चश्मा, क्यों? उससे दूर की चीज करीब नजर आती है। किसी की दूर की निगाह कमजोर हो तो चश्मा लगाए ना, अच्छा नजर में भी फर्क है। किसी के करीब की खराब है तो किसी की दूर की खराब, फर्क है ना नजरों में। चश्मा लगाया, दूर की चीज करीब नजर आ गई। चश्मे ने क्या किया, जो दूर है उसे करीब कर दिया। आपने चश्मा उतारा फिर निगाह वैसी हो। ये तो हमारी जाहिरी निगाह का हल। लेकिन बातनी निगाह जो है ये कमजोर नहीं होती, हमेशा यकसा देखती। जिसकी बातनी निगाह कभी हो, बातनी आंख खुल चुकी हो, वो जैसे दूर देखता है ऐसे करीब में भी देखता है, जैसे अंधेरे में देखता है ऐसे रोशनी में भी देखता है, और जैसे दिन की रोशनी में देखता है ऐसे ही रात की तारीकी में देखता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि उसकी बातनी निगाह और बातनी आंख खुल चुकी है। दूर और नजदीक, करीब और बाइद, उसके लिए कोई चीज नहीं है, हर तरीके से वो यकसा देखता। अब देखो गौसे आजम की निगाह। हजरत अबुल फरा अल कीमी एक बुजुर्ग गुजरे गौसे आजम के जमाने, फरमाते कि मैं इब्तिदा में शुतर बानी का काम करता था, ऊंटों का, ऊंट चराता था, उनकी देखभाल करता था। एक सफर पे जा रहा था, एक आदमी मेरा दोस्त मेरे साथ था, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसने महसूस किया कि उसकी मौत का वक्त आ गया। जाहिर इंसान को महसूस हो जाता है, हालत ऐसी नहीं कि मजीद चल सके। उसने क्या किया था, 10 दीनार निकाल कर मुझे दिए कि ये तुम अपने पास रखो, और अपनी एक कीमती चादर दी कि ये अपने पास रखो। क्यों? कहा देखो मेरी मौत का तो वक्त आ गया, मुझे अब महसूस हो रहा है कि अब मैं मजीद जिंदा नहीं रहूंगा। ये मेरे 10 दीनार और ये चादर गौसे आजम की खिदमत में पहुंचा दो, मेरा नाम ले लेना और कहना कि ये आपको 10 दीनार नजराना भेजा है और ये चादर दी, बता देना कि वो मरने से पहले ये दे गया, वसीयत कर। अब उस जमाने में 10 दीनार की भी बड़ी हैसियत, सस्ता जमाना। अब ये वहां से चले, सफर करते करते बगदाद पहुंचे, और जब बगदाद पहुंचे अब नियत बदल गई। पहले तो ये सोचकर आए थे कि देखो उसने कहा था तो मैं ये 10 दीनार और ये चादर जो है उसे पाक की खिदमत में पेश कर दूं। लेकिन जब पहुंचे अब दिल ने कहा यार उनको क्या पता कि किसी ने वसीयत की है, उनको तो किसी ने नहीं बताया ना, ना मरने वाले ने ये कहा था कि मैं ये देकर मरूंगा, और जब उसने मुझसे कहा था तो तीसरा कोई था ही नहीं, कोई गवाह भी नहीं। और याद रखिए यही चीज इम्तिहान है, यही बात बड़ा इम्तिहान है। अगर कोई आपको कोई अमानत दे और कोई तीसरा ना हो तो ये मत समझना कि कोई नहीं है, एक देखने वाला है जो देख रहा। जब कोई भी नहीं देख रहा तो एक देखने वाला देख रहा, वही इम्तिहान होता है। कि अगर कोई गवाह नहीं है, किसी ने आपको अमानत दे दी तो जिसके लिए दी है आप बहिफाजत उस तक पहुंचा दें। ये है दयानतदारी का तकादा कि गवाह ना हो फिर भी आदमी अपने ईमान को कायम रखते हुए अमानतदारी का सबूत दे और अमानत उसके हकदार तक पहुंचा दे। अब इन्होंने दिल में सोचा कि गवाह भी कोई नहीं है और गौसे आजम को क्या पता कि किसी ने उनके लिए ये अमानत भेजी, तोहफा भेजा, भूल गए वो पैसे जो थे खर्च कर लिए। दिन गुजरते गए, खुद भी जहन से निकल गया और ख्याल भी नहीं आया कि कभी मुझे देना है। वो कहां पूछेंगे, उनको तो पता ही नहीं, ये नहीं पता सरकार ने फरमाया इत्तकु फिरासत अल्मुमिनीना फइन्नहु यनज़रु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और फिरासत एक कैफियत का नाम है कि जब वो मोमिन के कल्ब पर तारी होती है तो मख्फी चीजें उस पर मुनकशिफ हो जाती, जाहिर हो जाती है। कोई उसके सामने आता है तो उसकी कल्ब की कैफियत उस पर जाहिर हो जाती। अब अरसे दराज गुजर गया, एक दिन बगदाद के बाजार में से गुजर रहे थे, देखा कि गौसे आजम सामने से तशरीफ ला रहा। अब इन्होंने देखा चलो चल के दस्तबोसी कर ले, लोग आगे बढ़े, हुजूम हो गया, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई सामने से, कोई पीछे से, सबने घेर लिया गौसे आजम को। अब ये भी आगे बढ़े हजरत अबुल फरह और जाकर दस्ते मुबारक को बोसा दिया, तो गौस ने हाथ छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। अब ये जरा घबराए कि क्या बात है, होते ना हाथ में लाके छोड़ दिया, दूसरे की तरफ तीसरे की तरफ, इनको पकड़ लिया। अब इन्होंने गौर से देखा, फरमाया हमारी अमानत कहाँ है? अब ये सोच रहे कौन सी अमानत। फिर उस आदमी का नाम दिया कि इतने अरसे पहले जो 10 दीनार और चादर दी थी वो कहां गई। अब तो होश उड़ गए, और ऐसे होश उड़े कि बेहोशी हो गए, होश वाके उड़ गए, बेहोश होकर गिर गए। गौस ने हाथ छोड़ दिया, इतनी सी बात कही चले। अब जब होश आया तो फिर दौड़े हुए गए जाके कदम पकड़ ले, हुजूर मुझसे गलती हुई। फरमाया तो अमानत थी, उसमें खयानत नहीं करनी थी, मैं तो ये समझा था कि आपको क्या पता, ना तो उसने बताया ना कि कोई और बताएगा, कोई तीसरा था ही नहीं। सरकार ने फरमाया इत्तकु फिरासत अल्मुमिनीन फइन्नहु यनज़रु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। हमारी कैफियत क्या है, हम सामने वाले को अपनी तरह समझते, जैसे हमें नहीं पता तो इनको भी नहीं पता हो, हमें नहीं पता तो पीर साहब को क्या पता, हम नहीं जानते तो ये भी नहीं जानते, हमने छुपा लिया तो इनसे छुप गया, ये नहीं पता कि अगर उन्होंने जाहिर नहीं किया तो तुम्हारी पर्दापोशी कर ली, ये खुश होकर फिर रहे कि हमें नहीं, हमने नहीं बताया। वली की निगाह जब सामने वाले पर पड़ती है तो जिस तरह एक्सरे मशीन होती है ऐसे ही वलीउल्लाह की निगाह होती है। एक्सरे कराए ना, अंदर की चीज जाहिर होती है या नहीं, पूरे जिस्म के अंदर की कैफियत जाहिर हो जाती है। साइंस ने मसले को हल कर दिया, अरे साइंस तरक्की करके मशीन इजाद करे और मशीन तुम्हारा एक्सरे कर ले, तो जो अल्लाह के वली की निगाह अगर एक्सरे कर ले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इत्तकु फिरासत अल्मुमिनीन फइन्नहु यनज़रु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। कुतुबुल अक्ताम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हमेशा अपनी निगाहें नीचे रखते, हमेशा निगाहें नीचे रखते, लेकिन जब कोई फासिक और फाजिर उनके सामने आता एक निगाह भर के उसको देख लिया, जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दिया, सच्चा और पक्का मोमिन बना। यह है वली की निगाह की तासीर। गौसे आजम इबादत में मसरूफ है, चोर दाखिल हो गया, चोर अचोर क्यों जाता है, चोरी करने के लिए। उसने सोचा कि दिन भर लंगर बढ़ता है, अब लंगर वही बांटेगा जिसके पास हो, खाना वही खिलाएगा जिसके पास पैसा हो। जब देखो लोगों का हुजूम लगा हुआ है, जब देखो फुकरा है, मसाकीन है, बेवाए हैं, युतामा हैं, जितने भी हैं सब लगे हुए, हर एक को मिल रहा, यकीनन इनके पास बड़ी दौलत होगी। शेख अब्दुल कादर जिलानी, गौसे आजम, इनके पास बड़ी दौलत होगी। रात को दाखिल हो गया, और जब दरवाजे पे पहुंचा तो देखा दरवाजा भी खुला, बड़ा खुश हुआ कि दरवाजा भी खुला मिल गया। अंदर गया, माल असबाब लूट लूं, दौलत में लूट लूं, देखा तो कुछ है ही, अरे इतने बड़े सखी, 24 घंटे लंगर चल रहा है, कुछ है ही नहीं घर में, ये कैसे बात है। इधर ये दाखिल हुआ, उधर गौसे आजम को पता चल गया, अभी ये दाखिल हुआ और घर में अंधेरा है, गौसे आजम इबादत में मसरूफ हैं, नवाफिल में मसरूफ हैं, जिक्र अजकार में मसरूफ हैं, ये दाखिल होकर तलाशी ले रहा, इधर हाथ मारा, उधर मारा, इधर मारा, कोई चीज नहीं। हैरान है कि ये क्या वजह है। सारा दिन लंगर लुट रहा है, 24 घंटे लंगर, लोगों को जकात खैरात और फला फला चीजें सब, और घर में देखो तो कुछ नहीं। उधर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ए गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी, एक अब्दाल का इंतकाल हो चुका है, उसकी जगह किसकी तकर्रुरी करनी है। गौस ने गर्दन झुकाई, कहा एक मेहमान हमारे घर आया हुआ है रात से, एक मेहमान रात से आया हुआ है, वो बड़ा कुछ तलाश कर रहा है, उसे मिल नहीं रहा, और हम सोच रहे हैं कि खाली हाथ क्यों जाए, जब गौस के दर पे आया है तो खाली क्यों जाए, बुलाओ उसको हमारे पास ले आओ। खुदाम गए उसको पकड़ लिया, अब ये डर गया, जाहिर चोर था ना, कहना पकड़ा गया मैं, अब देखो क्या होता है, कहा नहीं तुम्हें गौसे आजम बुला रहे हैं, जाकर सामने बिठा दिया। गौस ने सीने पर हाथ रखा, एक निगाह डाली, उसी निगाह से चोर को वली बना दिया। एक निकाह डाली, वली बना दिया, और कहा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कि फला इलाके में जिस अब्दाल का इंतकाल हुआ था उसकी जगह इसका तकर्रुर कर दी, इसको भेज दीजिए। पता चला कि चोर को वली बनाना ये गौसे आजम की निगाह का काम। निगाह निगाह में भी फर्क है ना, जिस तरह जाहिरी निगाह में फर्क है, इसी तरह बातनी निगाह में भी फर्क, लेकिन एक फर्क और है, जाहिरी निगाह कमजोर होती है, बातनी निगाह कमजोर नहीं होती, तेज से तेज होती चली जाती, इसलिए कि वो निगाह जो है वो फिर अल्लाह की आंख से देखता है, अल्लाह के कान से सुनता है, अल्लाह की जबान से बोलता, फिर उसकी कैफियत ये हो जाती। तो एक निगाह में जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दिया, और उसको भेज दिया अब्दाल बना, उस जगह उसका तकर्रुर कर दिया। और अब्दाल बनने में कितनी मेहनत है, इबादत करे, रियाजत करे, चिल्ला कशी करे, तकवा परहेजगारी इख्तियार करे, तब जाके उस मकाम पर पहुंचे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा ये है कि एक भरपूर निकाह डाली, उसी वक्त तस्किए नफ्स कर दिया, तस्किए कल्ब कर दिया, और उसी वक्त उसको अब्दाल बनाकर भेज दिया। अच्छा, हम जो इन बुजुर्गाने दीन के साथ लगे हुए हैं उसकी एक वजह और है। देखो, एक होती है मेरिट, काबिलियत, किसी का तकर्रुर अगर होता है तो काबिलियत की बुनियाद पर होता होना ये चाहिए ना। मसलन किसी को अफसर बनना है, किसी को कहीं डायरेक्टर बनना है, कहीं प्रिंसिपल बनना है, कोई भी ऊंची पोस्ट हो, तो उसके लिए क्या है, मेरिट, काबिलियत, उसके पास इतनी सनदें हैं, वेल एजुकेटेड है, ये सारी चीजें हैं, तभी बनेगा ना। और अगर ना हो तब बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, लेकिन मैं कहता हूं बन जाएगा, क्यों, दूसरी चीज भी है उससे बन जाएगा। आजकल तो यही हो रहा है। एक होती है सिफारिश, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए दो चीजें, एक तो मेरिट, दूसरी सिफारिश, और तीसरी चीज वो तो बहुत गलत है, वो करनी भी नहीं चाहिए, उससे भी लोग पहुंच जाते हैं ऊपर, वो नहीं करनी चाहिए। तो जो दो चीजें मशहूर है, एक मेरिट और एक सिफारिश। सिफारिश यानी काबिलियत तो है लेकिन कम है, सिफारिश का दिन पहुंचा दो, नहीं ये मेरा बंदा इसको जरा कर दो, तो हो जाता है, पहुंच जाते हैं। अब क्या है, हमने गौसे आजम का दामन पकड़ा, क्यों, इसलिए कि मेरिट तो है ही नहीं, मेरिट काबिलियत नहीं है। और काबिलियत क्या है, क्या नामे अमाल में नमाजें हैं, रोजा है, हज और जकात है, सदकात और खैरात है, नेक अमल है, नहीं कुछ नहीं, न नमाज है, न रोजा, न हज, जकात, कोई चीज नहीं, क्या है, सिफारिश। सिफारिश है कि जब वहां पहुंचेंगे गौसे आजम सिफारिश कर देंगे, ये मेरे कादरी आ रहे हैं मौला, इन्हें बख्शते, गरीब नवाज कहेंगे चिश्ती आ रहे हैं इन्हें बख्शते, ख्वाजा नक्शबंद कहेंगे थोड़े से नक्शबंदी मौला इन्हें बख्शते, ख्वाजा सोरवत कहेंगे इन्हें बख्शते, मखदूम सब नानी के अशरफी आ रहे हैं इन्हें बख्शते। सिफारिश है, इसीलिए लगे हुए हैं कि नामे अमान में कोई नेक अमल नहीं है, हाँ गौसे आजम का दामन है, सिफारिश कर देंगे, यहां भी कामयाब इंशाअल्लाह, वहां भी कामयाब। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यही है, کہ ان بزرگان دین اور یہ کاملین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ وَكُنْ مَصَادِقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹے بھی موجود ہیں، ان جھوٹوں کے پیچھے مت جانا، جو سچے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب ان کے دامن سے وابستہ ہوگے ان کی ایک نگاہ کرم ہوگی، ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہونے کا نتیجہ۔ آج کی مبارک اور مقدس محفل سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی، اور جب ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ غوث اپنی نگاہ غوثیت سے پوری محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفید بھی فرما۔ ان کی شان یہ ہے، اپنے ایک جلسے میں مجمع میں خطاب فرما رہے ہیں، ایک شخص کا گزر ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی غوث کی تقریر کو نہیں سنا تھا، کبھی ان کے خطاب کو نہیں سنا تھا، میں نے دل میں سوچا چلو اس عجمی کا کلام بھی سن لے، اس عجمی کا کلام بھی سن لے۔ میں یہ سوچ کر آیا اور بالکل پیچھے بیٹھ گیا، جیسے ہی میں بیٹھا غوث اعظم نے خطاب کے دوران ہی نظر میرے اوپر ڈالی اور وہیں سے پکارا، اے آنکھ اور عقل کے اندھے، اس عجمی کا کلام سن کے کیا کرے گا، اس عجمی کا کلام سن کے کیا کرے گا۔ فرماتے میں فوراً آگے بڑھا اور ان کے قدموں پر سر رکھ دیا اور معافی مانگا۔ یہ ہے غوث کی نگاہ، کہ کوئی قریب ہو دور ہو، دل میں کیسا بھی خیال ہو، غوث اعظم اس کے خیال پر مطلع باخبر ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اس کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی اور یہ بلند مقام انہیں عطا فرمایا، اسی لیے ہم اس یقین کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ غوث اپنی نگاہ غوثیت سے اس پورے مجمع کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفید بھی فرما رہے ہیں۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت کا اور ان سے نسبت کا نتیجہ یہی ہے کہ جو آدمی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اسے ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اور یہ نہ صرف اس کی جان اور مال کی حفاظت فرماتے ہیں بلکہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو ان سے قریب ہے وہ اللہ سے قریب ہے، اور جو ان سے دور ہے وہ اللہ سے دور۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے؟ کیا وہ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا وہ سوتا ہے؟ کیا وہ جاگتا ہے؟ اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں، اور وہ خالق ہے، نہ وہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے، نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفتیں، یہ سارے لوازمات مخلوق کے لیے ہیں، وہ خالق ہے۔ تو جب وہ بیٹھتا نہیں تو وہ کیوں کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، جس طرح ایک آدمی دوسرے کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اپنا قرب اسے ایسے عطا کرتا ہوں جیسے میں اس کے پاس ہی بیٹھا ہوں، اپنا قرب ایسے عطا کرتا ہوں جیسے اس کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے اور دیکھیے غوث اعظم اللہ کا ذکر کرتے تھے یا نہیں، غریب نواز نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا یا نہیں، مخدوم سمنانی نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، بابا فرید نے اللہ کا ذکر کیا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اللہ کا ذکر کیا، قطب الدین بختیار کاکی نے اللہ کا ذکر کیا، داتا گنجا خلی انجبیری نے اللہ کا ذکر کیا، جتنے بزرگان دین تھے سب اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ غریب نواز کے قریب، غریب نواز اللہ کے قریب، مخدوم سمنانی اللہ کے قریب، غوث اعظم اللہ کے قریب، جتنے بزرگان دین ہیں یہ سب اللہ کے قریب۔ اور اس کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے قریب ہیں تم ان کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جو اللہ کے قریب ہیں تم ان کے قریب ہو جاؤ، خود بخود اللہ کے قریب ہو جاؤ. اسی لیے ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی چیز نہیں ہے. ہم قرب الہی چاہتے ہیں. اسی لیے کسی اس بندے کا قرب حاصل کر لو جس کو اللہ کا قرب حاصل، جو اللہ کے قریب ہے. جب تم اس کے قریب ہو جاؤ گے اللہ کے خود بخود قریب. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مقصد یہی ہے. الحمدللہ للہ ایسا نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں. انشاءاللہ اگر نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن ان کی نسبت ہے، اور اس نسبت سے یہاں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب. آج کی مبارک اور مقدس محفل اسی سلسلے میں منعقد ہوئی ہے کہ ہم غوث اعظم کا ذکر سنیں اور سنائیں، ان کی کرامات، ان کے کمالات اور ان کے تمام فضائل اور مناقب اس کو سنیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور انہی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.